हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंद तीसरा अध्याय 33वां श्लोक। तो ये हम पढ़ रहे हैं प्रचेताओं के कार्यकलाप, और विशेष करके यहाँ पे जो अभी चल रहा है प्रचेता क्या कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो आज उसी स्तुति का हम 33वां श्लोक पढ़ेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है। यावते मायया स्पृष्टा भ्रमाम इह कर्मभी तावत् भवत् प्रसंगानां संगस्यान्नो भवे भवे। यावते मायया स्पृष्टा भ्रामम इह कर्मभिः तावत् भवत् प्रसंगानां संगस्यान्नो भवे भवे। यावते मायया स्पृष्टा भ्रमाम इह कर्मभिः तावत् भवत् प्रसंगानां संगस्यान्नो भवे भवे। यावते मायया स्पृष्टा भ्रामम इह कर्मभिः संगस्यान्नो भवे भवे। यावते मायया स्पृष्टा भ्रमाम इह कर्मभिः तावत् भगवत् प्रसंगानां भवे भवे। यावते मायया स्पृष्टा तावत् भगवत् प्रसंगानां संगस्यान्नो भवे भवे। यावते मायया स्पृष्टा कर्मभिः तावत् मत् प्रसंगानां संगस्यान्नो भवे भवे। यावत् जब तक ते तुम्हारी आपकी मायया माया से स्पृष्टा दूषित भ्रमामह हम घूमते हैं इह इस संसार में कर्म भी ही कर्मों के कारण तावत् तब तक भवत् प्रसंगानाम आपके प्रेमी भक्तों की संगह संगति स्यात् हो नह हमारी भवे भवे प्रत्येक योनि में। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। हे स्वामी, हमारी प्रार्थना है कि जब तक हम अपने सांसारिक कलमश के कारण इस संसार में रहें और एक शरीर से दूसरे में तथा एक लोक से दूसरे लोक में घूमते रहें, तब तक हम उनकी संगति में रहें जो आपकी लीलाओं की चर्चा करने में लगे रहते हैं। हम जन्म जन्मांतर विभिन्न शरीर शारीरिक रूपों में और विभिन्न लोकों में इसी वर के लिए प्रार्थना करते हैं। कृपया दोहराइए, बहुत सुंदर श्लोक है। हे स्वामी, हमारी प्रार्थना है कि जब तक हम अपने सांसारिक कलमश के कारण इस संसार में रहें और एक शरीर से दूसरे में तथा एक लोक से दूसरे लोक में घूमते रहें, तब तक हम उनकी संगति में रहें जो आपकी लीलाओं की चर्चा करने में लगे रहते हैं। हम जन्म जन्मांतर विभिन्न शारीरिक रूपों में और विभिन्न लोकों में इसी वर के लिए प्रार्थना करते हैं। तात्पर्य, यह सर्वश्रेष्ठ वर है जिसे भक्त भगवान से मांग सकता है। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भी हुई है, स्थाने सिता श्रुतिगताम तनुवान मनोभी, श्रीमद् भागवतम 10:14:3। भाग्य के अनुसार मनुष्य किसी एक स्थिति में हो या दूसरी में, प्रत्येक दशा में उसे भगवान के कार्यकलापों तथा लीलाओं का श्रवण करते रहना चाहिए। शुद्ध भक्त कभी अपनी मुक्ति या आवागमन के चक्र से बचने की प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में इनका महत्व नहीं होता। भक्त के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है भगवान की लीलाओं तथा गुणों के संबंध में श्रवण करने का अवसर पाना। जो लोग इस संसार में भगवत भक्ति करते हैं, उन्हें वैकुंठ में भी यही सुअवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार भक्त के लिए वैकुंठ में सब कुछ है, क्योंकि जब तक वह भगवान की लीलाओं का श्रवण कर सकता है अथवा जहां भी वह कीर्तन कर सकता है, वहां भगवान उपस्थित रहते हैं। तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ताः। जब शुद्ध भक्त मिलकर भगवान के विषय में कीर्तन श्रवण या कथन करते हैं, तो वहां वह स्थान जहां वे एकत्रित होते हैं वैकुंठ बन जाता है। भक्त को वैकुंठ जाने के लिए भगवान से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। शुद्ध भक्त कहीं भी भगवान के गुणों का केवल निरअपराध भाव से जप करके वैकुंठ या वृंदावन बना सकता है। प्रत्येक जीवन भवे भवे में भगवान के गुणों का गान सुनने का अवसर प्राप्त हो, इसके लिए प्रचेतागण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। जीव एक देह से दूसरे देह में देहांतरण करता है, भक्त इस क्रिया को बंद करके करने के पक्ष में नहीं है। चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्ति अहेतुकै त्वयि। हे भगवान, मैं जन्म जन्मांतर आपकी शुद्ध भक्ति में स्थिर रहूं। विनयवश भक्त अपने आप को वैकुंठ जाने के अयोग्य समझता है, वह अपने को सदैव प्रकृति के गुणों में मलिन समझता है। भक्त को इन गुणों से भी मुक्त होने के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं रहती। भक्ति स्वयं दिव्य पद है, अतः इस विशिष्ट सुविधा की याचना करना व्यर्थ है। निष्कर्ष यह निकलता है कि शुद्ध भक्त जन्म मृत्यु के चक्र को रोकने के लिए उत्सुक नहीं रहता, वह तो उन भक्तों की संगति करने के लिए उत्सुक रहता है जो भगवान के कीर्तन तथा उनके गुणों के श्रवण में लगे हुए हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं च जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद जाने के लिए। तो आज ये बहुत ही सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम का और बहुत सुंदर तात्पर्य, इतना सुंदर श्लोक है। इसमें प्रचेता भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने, भगवान क्यों प्रकट हुए प्रचेताओं के सामने? क्या उन्होंने तपस्या किया? इसीलिए तपस्या तो किया, लेकिन मुख्य कारण है उन्होंने रुद्र गीत का उच्चारण किया भक्ति के द्वारा। केवल तपस्या से भगवान को हम आकर्षित नहीं कर सकते, भगवान प्रकट नहीं होते, देवता प्रकट होते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप ने तपस्या किया, ब्रह्मा जी मजबूर होकर आ गए, रावण ने तपस्या किया, शिवजी आ गए, लेकिन कृष्ण को हम तपस्या के बल से नहीं प्रसन्न कर सकते, भगवान विष्णु को नहीं। बहुत श्लोक है इस प्रकार भागवतम में भी और अन्य शास्त्रों में कि भगवान कभी भी अन्य साधनों से कभी प्रसन्न नहीं होते। कोई चाहे जितना योग कर ले या जप कर ये तपस्या करे, उससे भगवान, भक्ति में तपस्या करे तो उससे भगवान प्रसन्न होते। तो प्रचेताओं को ये अनुभव है कि वो जब तपस्या करने निकले तो उनका परम सौभाग्य था कि उनके सामने कौन प्रकट हुए? शिवजी। तो शिवजी कौन है? वैष्णवनाम यथाशंभु। तो शिवजी उनके सामने प्रकट हुए और शिवजी ने देखा कि उनके अंदर एक निष्ठा थी, तो उन्होंने उनको रुद्र गीत के बारे में बताया। क्योंकि शिवजी तो महान वैष्णव है, जबकि भौतिक इच्छा मांगता है तो शिवजी जल्दी से देख के उनको टाल देते हैं, इसलिए शिवजी का नाम क्या है? आशुतोष। लेकिन अगर वो देखते हैं वास्तव में कोई सच्चे हृदय वाला है तो शिवजी उनको फिर कृष्ण की भक्ति के लिए कहते हैं। यहाँ ऐसा ही हुआ, जो प्रचेता थे तो शिवजी ने उनको देखा और उनको रुद्र गीत सुनाया, बहुत सुंदर गीत जो आप पहले सुन चुके हैं, जो भगवान कृष्ण का गुणगान है। तो इस रुद्र गीत का उच्चारण प्रचेताओं ने किया और इसके फलस्वरूप भगवान स्वयं उनको दर्शन देने प्रकट हुए। तो इसीलिए जब भगवान ने बोला कि हे प्रचेता मैं प्रसन्न हूँ, आप कुछ वर मांगो, तो यहाँ प्रचेता क्या वर मांग रहे हैं? कि हमें केवल एक वर चाहिए। क्या वर चाहिए? कि आपके भक्तों का संग मिलता रहे, जन्म जन्मांतर हम चाहे किसी भी शरीर में रहें, हमें क्या प्राप्त हो? आपके भक्तों का संग, भगवत प्रसंगानाम संग। तो आपके जो भक्त हैं उनका संगति चाहिए। और कल का श्लोक जो आने वाला है आप सुनेंगे, वो तो और भी सुंदर श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। तुल्याम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। और आपको सुन के खुशी होगी कि यही श्लोक तुल्याम लवेनापि, एग्जैक्ट यही श्लोक श्रीमद् भागवत में एक बार और आया है। जैसे भगवत गीता में मन मना भव तो है, दो बार वो श्लोक आया है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में कई महत्वपूर्ण श्लोक हैं जो कई बार श्रीमद् भागवतम में बोले गए हैं। और ये श्लोक तो एज इट इज, कोई चेंज नहीं है इसमें, यथा वैसे ही ये श्लोक पहले स्कंद के 18 अध्याय के 13 श्लोक में पाया जाता है। यही सेम श्लोक, तुल्याम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संघर्ष मर्त्यानाम के उदासीष। ये श्लोक सुत गोस्वामी कह रहे हैं, सॉरी जो सौनक ऋषि और जो नैमिषारण्य में जो ऋषि हैं वो सूत गोस्वामी को प्रार्थना कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? एक क्षण की भी शुद्ध भक्तों की संगति के सामने स्वर्गलोक जाने अथवा पूर्ण मोक्ष को प्राप्त करना या ब्रह्म तेज में मिलना, ये सब की तुलना नहीं की जा सकती। मतलब अगर आप एक तरफ भगवत भक्तों का संग देखें, भक्तों का संग, उसके साथ आप किसकी तुलना नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार की भौतिक संपत्ति, स्वर्ग में जाना, यहां तक कि मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती। शरीर को त्याग करने वाले मरने वाले जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ वर तो शुद्ध भक्तों की संगति है। यानी हम सब जो बद्ध जीव हैं, हमारे लिए सबसे ऊंचा वर अगर कोई है वो क्या है, भक्तों का संग प्राप्त करना। इससे ऊंचा और कोई उपलब्धि संसार में नहीं है। इसके बारे में जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए। कई बार हम सोचते हैं कि हम कोई बड़े व्यक्ति बन जाएं, धनी बन जाएं, बड़ा हमारा नाम हो जाए, ये सब उपलब्धियों का क्या मूल्य है, कुछ भी नहीं। मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाए। कोई सोचे मैं स्वर्ग जाऊं तो उसका भी कोई मूल्य नहीं है। स्वर्ग जाएंगे कुछ समय, जब तक पुण्य रहेगा तब तक भोग करेंगे, फिर वापस संसार में आना पड़ेगा। मोक्ष प्राप्त करना, उसका भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि भक्ति के बिना अगर कोई ब्रह्म ज्योति में लीन होता है तो उसमें उसका आनंद की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन जो भक्तों का संग है ये सबसे ऊंचा है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी तात्पर्य समझा रहे हैं कि भक्तों के संग में भगवान की भक्त क्या करते हैं, सब मिलके भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, भगवान का लीला श्रवण करते हैं, गुणों का मच्चित मद्गता प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च वाम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। ये भक्तों का स्वभाव है। जब भी भक्त एक साथ एकत्रित होते हैं क्या करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। और जहां भी भगवान का गुणगान करते हैं वो स्थान क्या बन जाता है, वैकुंठ। ये श्लोक भी आपने कई बार सुना होगा, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ता। भगवान कहते हैं नारद मुनि से कि हे नारद, मैं ना तो अपने निवास वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगियों के हृदय में रहता हूँ, मैं तो उस स्थान में वास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरे पवित्र नाम का कीर्तन करने में और मेरे रूप लीलाओं तथा गुणों की चर्चा चलाते हैं। यत्र गायन्ति मद्भक्ता, जहाँ भक्त लोग कीर्तन करते हैं, जहाँ भक्त लोग भगवान की लीला सुनते हैं, गुण सुनते हैं, वही वास्तव में वैकुंठ है, वही भगवान कृष्ण वास करते हैं। एक तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं, हम जैसे भी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं निरअपराध भाव से, वहाँ निश्चित तुरंत चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो जाते हैं। सोचिए, ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु केवल, जैसे हम चैतन्य चेतन में सुनते हैं श्रीवास ठाकुर श्रीवास आंगन में प्रकट होते थे, और नरोत्तम दास ठाकुर ने जब कीर्तन किया तब प्रकट हुए थे खेतुरी में। इन प्रभुपाद जी कहते हैं, अभी भी प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर हम निरपराध भाव से कीर्तन करेंगे या नाम जप करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी महिमा है नाम संकीर्तन की, भगवान की कथा सुनने की, कि भगवान स्वयं वहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं। और जहाँ भगवान उपस्थित हो जाते हैं वो क्या हो जाता है, भगवत धाम। गोलोक वृंदावन वैकुंठ, वहां की क्या विशेषता है, वहां भगवान रहते हैं। तो इस भौतिक दुनिया में भी जहां पे हम भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, भगवान की कथा श्रवण करते हैं, तो वो स्थान क्या बन जाता है, वैकुंठ, गोलोक वृंदावन। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा इस्कॉन के जितने सेंटर है पूरे वर्ल्ड में वो सब आध्यात्मिक जगत है, सब गोलोक वृंदावन है, सब वैकुंठ धाम। भौतिक दुनिया का अंश नहीं है, क्योंकि वहां पे नित्य रूप से इस्कॉन के हर सेंटर में सुबह ठाकुर जी की मंगला आरती होती है, भागवतम क्लास कीर्तन, तो वहां भगवान स्वयं प्रकट रहते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने भी कहा कि मैं कोई भी सेंटर में कहीं भी अगर मैं शरीर छोड़ता हूं तो गोलोक वृंदावन है। हालांकि प्रभुपाद जी अंत समय वृंदावन रहे, लेकिन 1977 में वो एक बार फिर से भ्रमण करने निकले लंदन और दूसरे देश में। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, अगर मैं शरीर छोड़ भी जाता हूँ, अगर कोई भी इस्कॉन सेंटर में मैं शरीर छोड़ता हूँ तो वो भी वृंदावन है। तो ये प्रभुपाद जी विशेष कृपा है कि इस्कॉन का जो भी सेंटर है, जो भी मंदिर है, वो गोलोक धाम या वैकुंठ से अभिन्न है। और यहाँ वृंदावन में जो हमारे तो परम सौभाग्य है कि हम वृंदावन में जो इस्कॉन मंदिर प्रभुपाद जी ने बनाया, ये तो वास्तव में आध्यात्मिक जगत ही है। अगर हम यहाँ रह रहे हैं तो और कुछ वर मांगने की आवश्यकता नहीं, बस यही वरदान हम मांगे कि हमें ऐसे ही बस भक्तों का संग मिलता रहे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी भी प्रार्थना में कहते हैं कि कीटो जन्म हो यथा तुआदास, बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं अभिलाष। तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि अगर आप मुझे कीट योनि में भी जन्म देते हैं, किसी भी योनि में जन्म देते हैं, मुझे भक्तों का संग दीजिए, और अगर भक्तों से विमुख करके आप मुझे अगर ब्रह्मा भी बनाना चाहते हैं तो मैं नहीं बनना चाहता। यही भक्तों का एकमात्र भाव है कि मुझे हमेशा भक्तों का संग दीजिए, क्योंकि अगर भक्तों का संग मिलेगा तो स्वाभाविक रूप से भक्तों का संग में वो आके भगवान का स्मरण करेगा, भगवान का नाम कीर्तन करेगा। इसलिए हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस हमें भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करना चाहिए, हे कृष्ण हे भगवान, हमें केवल आप अपने भक्तों का संग दीजिए। भक्तों का संग में रहेंगे तो हम भक्ति स्वाभाविक रूप से करेंगे। इसलिए तो महाप्रभु कहते हैं, ना धनम न जन्म न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामे, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकेतु। ये बहुत ही सुंदर प्रार्थना है चैतन्य महाप्रभु ने, आप जानते हैं कि ऐसे तो इतना शिक्षा दिया उन्होंने, लेकिन केवल 8 श्लोक उन्होंने स्वयं रचना किए, उनमें से ये शिक्षाष्टकम का ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी। क्योंकि संसार में उल्टा है, लोग भगवान के पास जाते हैं किस लिए, धन मांगने जाते हैं, सुंदरी स्त्री चाहते हैं, या ज़्यादा अनुयायी चाहते हैं, इस संसार में ख्याति चाहते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल उल्टा कह रहे हैं, या मुक्ति चाहते हैं। महाप्रभु बिल्कुल उल्टा कर दिए, महाप्रभु कहते हैं ना मुझे धन चाहिए, ना धनम ना जन्म, ना मुझे बहुत सारे शिष्य चाहिए, ना सुंदरी ना सुंदरी स्त्री चाहिए, कविता मुझे संसार में ख्याति भी नहीं चाहिए। अधिकतर क्या होते हैं, जो साधु संत रहते हैं वो चाहते हैं कि मेरा बड़ा नाम हो, टीवी में मेरा प्रोग्राम आए, लाखों लोग मेरा कथा सुने, भक्त ये भी नहीं चाहता। इतना ही नहीं, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे, वो चाहता है कि जन्म जन्मांतर तक, यानी भक्त मुक्ति भी नहीं चाहता। जो 5 चीज है जिसके पीछे पूरा संसार दौड़ता है, धनम जन्म सुंदरीम और कविता और मुक्ति, ये 5ों चीज को चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, इसका बहिष्कार कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं कि ये कुछ नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए, भवतात् भक्ति अहेतुकेतु, आपके चरणों में भक्ति चाहिए। और सेम जैसा आज के श्लोक में पढ़ रहे हैं कि आपके भक्तों का संग चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं और कुछ नहीं चाहिए भक्तों को, भक्त ज़्यादा उत्सुक नहीं है कि मुझे भगवत धाम जाना है, तो भगवान के ऊपर है, अगर लेना चाहते तो अच्छी बात है, क्योंकि भक्त हमेशा क्या विनम्र भाव रखता है, वो कभी ऐसा नहीं सोचता कि मैं बहुत महान भक्त हूँ, मुझे तो भगवान गोलोक धाम ले ही जाएंगे इस जन्म मृत्यु के बाद, नहीं। भक्त हमेशा अपने आप को बहुत विनम्र समझता है, सोचता है मैं तो इतना पतित हूँ, मेरे में इतने अवगुण हैं, इतने कलमश है, मुझे तो न जाने कितना जन्म लगेगा शुद्ध होने में। लेकिन प्रभु बस यही प्रार्थना है आपसे कि जन्म जन्मांतर तक मुझे भक्तों का संग दीजिए, भक्तों के संग से मुझे वांछित मत कीजिए, क्योंकि अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे तो भक्ति हमारी बनी रहेगी। बहुत सरल ये फॉर्मूला है, जहाँ भक्तों के संगत से दूर हुए भक्ति हमारी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि संगति तो करनी ही है। प्रभुपाद जी कहते हैं 2 तरह की संगति है, एक है भगवत संगी लोग और दूसरे योषित संगी। तो हमें किनका संग करना है, जो भगवान का संग करते हैं भक्त उनका संगति करना है, या योषित संगी यानी जो संसार में स्त्री का संग करते हैं, धन के पीछे भागते हैं, उनका संग करना, तो ये निर्णय हमें लेना है। क्योंकि मनुष्य को संगति तो चाहिए, तो अगर हम योषित संगियों का संगति करेंगे या भौतिकवादियों का संगति करेंगे तो वैसी चेतना हमारे मन में आएगी, हम भी संसार के भोग के पीछे भागेंगे, और अगर हम भक्तों का संग करेंगे तो फिर हमारे मन में संसार में भोग करने की इच्छा नष्ट हो जाएगी और भक्ति में हमें रुचि बढ़ती जाएगी। तो यही सार है भक्ति का, बहुत सुंदर प्रार्थना है। आप देखिए पूरे शास्त्र में जहाँ भी प्रार्थना है, जो शुद्ध भक्त प्रार्थना करते हैं भगवान से, वो केवल यही वरदान मांगते हैं कि मुझे केवल आपके भक्तों का संग दीजिए। एक बहुत सुंदर तात्पर्य है श्रीमद ये चैतन्य चैतामृत में, जिसमें बहुत ही सुंदर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। वो लीला आप सब जानते हैं कि कैसे महाराज प्रताप रुद्र, आप नाम सुने महाराज प्रताप रुद्र, महाराज प्रताप रुद्र राजा थे उड़ीसा के, और उस समय उड़ीसा जैसे आज छोटा राज्य छोटा नहीं था, उस समय उड़ीसा और बड़ा राज्य था, पूरा आंध्रा भी उड़ीसा के अंडर था, तो साउथ दक्षिण भारत तक उड़ीसा उत्कल देश फैला हुआ था। उस उत्कल देश के राजा थे कौन, महाराज प्रताप रुद्र, लेकिन थे बहुत मान भक्त जगन्नाथ जी के। और जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना, जब चैतन्य महाप्रभु पूरी आए तो चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनके बहुत आकर्षण हुआ और वो महाप्रभु से मिलना चाहते थे, लेकिन महाप्रभु उनको दर्शन नहीं दिए। क्यों? महाप्रभु उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे कि जो सन्यासी हैं उनको भौतिकवादी लोगों से नहीं मिलना चाहिए, धनी लोग या राजा, क्योंकि ये लोग भौतिकवादी लोग रहते हैं। साधारणतः जो राजा या धनी लोग रहते हैं वो हमेशा भोग विलास में लगे रहते हैं, तो उनसे साधु सन्यासी भक्तों को मिलना नहीं चाहिए। तो महाप्रभु ये उदाहरण प्रस्तुत किए थे, लेकिन अंदर से महाप्रभु प्रसन्न थे, जानते थे कि वो मेरा परम भक्त है। और विशेष करके रथ यात्रा में जब महाराज प्रताप रुद्र ने वो छेरा पौरा होता है ना, झाड़ू लगाते हैं, आज भी प्रथा चल रही है, लेकिन आज तो केवल वो दिखावा हो गया, बस राजा थोड़ा सा हिलाते, लेकिन उस समय प्रताप रुद्र जी पूरे निष्ठा के पूर्वक अच्छे से झाड़ू देते थे। और उनके जो ये सेवा भाव देख के बहुत प्रसन्न हुए चैतन्य महाप्रभु, और मन में बहुत प्रसन्न हुए और उनको दर्शन देने का उन्होंने सोचा कि हाँ मुझे दर्शन देना चाहिए, लेकिन परोक्ष भाव से दिए, मतलब ऐसा दिए छिपके कि बाहर से ऐसा लग रहा है कि उनको दर्शन दिए भी नहीं, लेकिन उनको दर्शन दिए। दो बार ऐसा हुआ। एक बार क्या हुआ, जब वो रथ यात्रा में नृत्य कर रहे थे तो नृत्य करते करते महाप्रभु तो प्रेमावेश में आ जाते थे, तो एकदम से उछल के प्रताप रुद्र के गोद में जाके गिर पड़े। और फिर थोड़ी देर के बाद जब चेतना आई तो महाप्रभु बोले छी 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 छी, मैंने क्या कर लिया, मैंने विषयी का स्पर्श किया, जबकि महाप्रभु खुद उछल के महाराज प्रताप रुद्र के ऊपर गिरे, लेकिन बाहर से क्या बोल रहे, छी 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 मैंने विषयी का स्पर्श कर लिया। क्यों? महाप्रभु प्रसन्न थे, इसलिए महाराज प्रताप रुद्र को अपना शरीर का स्पर्श कराना चाहते थे। तो महाराज प्रताप रुद्र को बड़ा दुख हुआ, बोला महाप्रभु मुझे ऐसे कर रहे हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य और भक्तों ने समझाया, बोला कि नहीं, ये महाप्रभु तुम पे बहुत प्रसन्न है। और फिर भक्तों ने सलाह दी महाराज प्रताप रुद्र को कि जब रथ यात्रा के बाद जब भक्त बहुत थक जाते हैं तो एक उद्यान है वहाँ पे, जहाँ पे महाप्रभु और सारे भक्त जाके थोड़ा विश्राम करते हैं, जगन्नाथ बल्लभ वाटिका आज भी है, तो वहाँ पे जब महाप्रभु विश्राम करेंगे तब तुम वहाँ पे जाना, एक साधारण वेश में जाना, राजा के वेश में नहीं, साधारण व्यक्ति के वेश में जाके और महाप्रभु की तुम सेवा करना। तो महाराज प्रताप रुद्र ने ये भक्तों की सलाह मानी उन्होंने, और ऐसा ही किया उन्होंने। जब महाप्रभु खूब रथ यात्रा में महाप्रभु बहुत कीर्तन करते थे, अभी दो महीना में रथ यात्रा का उत्सव आने वाला है, बहुत कीर्तन करते थे महाप्रभु सारे भक्तों के साथ में, सात कीर्तन मंडली रहता था, सातों कीर्तन मंडली में महाप्रभु अपने आप को विस्तार करते थे, एक साथ सब नृत्य करते थे, ऐसा नृत्य कि पूरे ब्रह्मांड में ये कीर्तन का गूंज फैल जाता था। तो ऐसा ही उदंड कीर्तन किए महाप्रभु और फिर बाद में विश्राम किए वाटिका में, गार्डन में। तो उस समय महाराज प्रताप रुद्र साधारण व्यक्ति का भेष बना के गए, महाप्रभु की चरण सेवा किया उन्होंने, और कौन सा गीत गाया, गोपी गीत, जो आप सब जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध गीत है श्रीमद् भागवतम का। तो महाराज प्रताप रुद्र ने गोपी गीत का उच्चारण किया, महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और विशेष करके उन्होंने ये श्लोक गाया, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति भूरिदा जना। और जब ये महाप्रभु ने सुना लास्ट टाइम भूरिदा जना, तो महाप्रभु एकदम प्रेमावेश में आ गए, आलिंगन किए कि भूरिदा जना तुम कौन हो इतने महान जो मुझे कृष्ण कथा का अमृत पिला रहे हो। तो महाराज प्रताप रुद्र ने क्या कहा, बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं उन्होंने, ये नहीं कहा कि मैं, आप जानते हैं मैं राजा उत्कल का राजा नहीं, महाप्रभु ने प्रताप रुद्र ने बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं उस समय, ये मध्य लीला का 14 अध्याय में आता है। राजा कहे आमी तुमार दासेर अनुदास भित्य भित्य करो ए मोर आश। राजा कहते हैं हे प्रभु, मैं आपके भित्यों का दासों के दास हूँ, और मेरी इच्छा क्या है कि आप मुझे अपने दासों के रूप में हमेशा स्वीकार कीजिए। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बहुत सुंदर कहते हैं, इंग्लिश में मैं दो लाइन पढ़ूंगा, द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट फॉर अ डिवोटी इज टू बिकम अ सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। कहते हैं भक्तों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, भगवान के दासों का दास बनना। किसी को डायरेक्ट भगवान का दास बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, भगवान के दासों के दासों का दास। फिर प्रभुपाद जी तीन उदाहरण देते हैं, कहते हैं प्रहलाद महाराज, अब सब अभी नरसिंह चतुर्दशी का उत्सव हुआ, आप सब कई दिन तक श्रवण किए, कृष्णन प्रभु सुना रहे थे प्रहलाद महाराज की प्रार्थना। तो जब नरसिंह देव ने बोला प्रहलाद महाराज को कि वरदान मांगो, तो प्रहलाद महाराज ने त्याग दिया, बोला मुझे कुछ भौतिक वरदान नहीं चाहिए क्योंकि मैं कोई बनिया नहीं हूँ। हाँ, बनिया की दुकान में जाते हैं ना, कुछ पैसा देते हैं कुछ वापस लेते हैं, तो लोग बिजनेस करने जाते हैं मंदिर में, भगवान मैं आपको 101 रुपया चढ़ाऊंगा, मुझे 1 करोड़ रुपया वापस मिलना चाहिए। क्या बिजनेस करते हैं, नहीं, 100 रुपया दे के 1 करोड़, या एक नारियल फोड़ के कहते हैं मुझे ये मिल जाए। तो नरसिंहदेव कहते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं मुझे, मैं ऐसा बिजनेसमैन नहीं हूँ, बनिया नहीं हूँ कि आपके लिए भक्ति किया मुझे कुछ रिटर्न में चाहिए, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल, मैं केवल आपके दास नारद मुनि की सेवा में लगा रहूं, केवल यही मेरी इच्छा है। उस प्रकार ध्रुव महाराज भी जब भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, पहले तो ध्रुव महाराज के अंदर भौतिक इच्छा थी, वो चाहते थे कि अपने पिता, क्योंकि उनके पिता जो थे उन्होंने उनका बहुत अपमान किया था, उनकी सौतेली माता ने, तो उनके मन में बहुत क्रोध था, प्रतिशोध का इच्छा था कि मैं अपने दादाजी से बड़ा राज्य मुझे प्राप्त हो। लेकिन जब भगवान प्रकट हुए तो प्रहलाद महाराज को बहुत लज्जा आई, बोले मैं कितना गिरा हुआ हूँ कि भगवान से भौतिक इच्छा के साथ भगवान के पास आया, बहुत उनको शर्म आई। वो कहते हैं स्वामी कृतार्थ उसमें तो वरम न जाचे, हे प्रभु अब मैं कृतार्थ हो गया, अब मुझे कोई वर नहीं चाहिए। और लेकिन फिर ध्रुव महाराज जब कुबेर उनको बोलते हैं कोई वरदान मांगो, तो ध्रुव महाराज यही वरदान मांगते हैं कि मुझे भक्तों का संग चाहिए। भगवान से भी ध्रुव महाराज यही वरदान मांगते हैं कि मुझे केवल भक्तों का संग दीजिए। और फिर तीसरा उदाहरण प्रभुपाद जी कह रहे हैं खोलोवेश श्रीधर का, जानते हैं खोलोवेश श्रीधर, ये भी बहुत सुंदर कहानी है, चैतन्य भागवत में बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि खोलोवेश श्रीधर महाप्रभु के बहुत महान भक्त थे, लेकिन वो बहुत गरीब थे, वो केवल केले के पत्ते और केला बेचते थे, इसलिए खोला उसे कहते, खोलोवेश, और इतने गरीब थे, लेकिन वो जितना भी उनका इनकम होता था उसका वो 50% हिस्सा गंगा जी की सेवा में लगाते थे, इतने गरीब होते हुए। और इतने गरीब थे कि उनके घर में छत भी नहीं था, छत से पानी गिरता था, उनका जो कपड़ा था उसमें अगर कहीं फट जाता तो सिलाई के लिए पैसा नहीं था, वो केवल गांठ बांध देते थे, इतना दरिद्र अवस्था था उनका। लेकिन फिर भी वो सबसे प्रसन्न थे, हर समय वो क्या करते थे, भगवान का नाम लेते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो इसमें उनको परम आनंद की अनुभूति होती थी और गंगा जी की सेवा करते थे। और महाप्रभु निमाई जब छोटे थे तो हर दिन खोलोवेश श्रीधर के पास पहुंच जाते थे और उनसे खरीदते थे पत्तल केला, जो केला का जो पेड़ रहता है मोचा इत्यादि, और उनसे मुलाई करते थे, क्या दर मुलाई कहते ना, बार्गेन करते थे। वो कहते थे इतना पैसा, महाप्रभु कहते नहीं तो बहुत ज़्यादा है, मैं इसका आधा दूंगा। फिर बहुत दोनों आपस में झगड़ा करते थे, फिर महाप्रभु कहते निमाई कहते थे नहीं ये भी बहुत ज़्यादा है, मैं कुछ भी नहीं दूंगा, मैं फ्री में ले लूँगा। तो बोलते थे अरे नहीं फ्री में मैं कैसे, मैं तो गंगा जी की सेवा करूँगा। कहते अरे गंगा जी तो मेरी दासी है। तो इस तरह से निमाई उनके साथ बहुत, फिर वो कहते अरे निमाई क्या बोल रहे हो, इस तरह से हर दिन उनका झगड़ा होता था। लास्ट में निमाई सब कुछ लेके आ जाते थे, लेकिन अंदर से बहुत प्रसन्न होते थे खोलोवेश श्रीधर, लेकिन उस समय उनको पता नहीं था कि ये स्वयं भगवान है चैतन्य महाप्रभु। तो एक बार जब महाप्रभु महाप्रकाश लीला किए, आप जानते हैं महाप्रकाश लीला बहुत सुंदर लीला है, जिसमें महाप्रभु ने अपने भगवत्ता का प्रदर्शन किया श्रीवास ठाकुर के घर में, और सारे भक्तों को अलग अलग रूप में दर्शन दिया, मुरारी गुप्ता को राम जी के रूप में दर्शन दिया, हरिदास ठाकुर को दर्शन दिया, सारे भक्तों को बुलाए और सबको बोले वरदान मांगो। तो महाप्रभु ने बोला जाओ खोलोवेश श्रीधर को बुला के लाओ, कोई जानता भी नहीं था श्रीधर कौन है, बोले जाओ वहाँ रहता है वो, हाँ वहाँ पर जाओगे तो जोर से आवाज़ आएगी हरे कृष्ण महामंत्र की, और उस व्यक्ति को बुला के लेके आओ। तो भक्त लोग गए और खोलोवेश श्रीधर को बुला के लाए, क्योंकि महाप्रभु ने निमाई कहते थे खोलोवेश श्रीधर को तो कि तुम झूठे हो, तुम बहुत बड़ी संपत्ति को छुपा के रखे हो, लोग नहीं जानते, एक दिन आएगा मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा तुम कितने धनी हो, तुम्हारे पास छुपी हुई संपत्ति। तो संपत्ति क्या है खोलोवेश श्रीधर के पास में, भक्ति की संपत्ति। तो आज महाप्रभु पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि असली संपत्ति खोलोवेश श्रीधर के पास क्या है। तो भक्त गए और खोलोवेशीधर को बुला के लाए। खोलोवेशीधर तो बोले मुझे बुला रहे महाप्रभु, तो बड़े आनंदित होके आए और महाप्रभु ने उनको बहुत उनकी प्रशंसा की, भूरी भूरी प्रशंसा की। फिर बोले खोलोवेश मांगो, जो मांगना है मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें पूरे पूरे संसार का मालिक बनना है मैं बना दूंगा, तुम्हें अष्ट योग या अष्ट सिद्धि चाहिए मैं वो दे दूंगा, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा, मांगो श्रीधर। श्रीधर फिर भगवान से कहते हैं भगवान मुझे आप मेरी परीक्षा मत लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए भौतिक संपत्ति, मुझे कोई योग सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो केवल चाहता हूँ कि आप जो निमाई के रूप में मुझे हर दिन आते थे, मुझे दर्शन देते थे, आप उसी रूप में हर समय मुझे अपना दर्शन दीजिए, मुझे भक्तों का संग दीजिए ताकि मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं। यह है भक्तों का भाव। कितने दरिद्र अवस्था थी खोलोवेशीधर की, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा महापुरुष ने, बस बोला कि मुझे भक्तों का संग दीजिए, मैं बस आपका दर्शन करता रहूं। फिर महाप्रभु उनको सुंदर रूप दर्शन कराए कृष्ण बलराम के। तो ये है भक्तों का भाव, हमें सीखना चाहिए। और यहाँ पे सेम चीज प्रचेता भी कह रहे हैं, प्रचेत कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन प्रचेताओं ने कहा कि भगवान आपके दर्शन हो गए और भला हमें क्या चाहिए, और आपके दर्शन किस लिए हुए, शिव जी के संग के वजह से। शिव जी ने थोड़ा समय हमें संग दिया, रुद्र गीत सुनाया, हमने रुद्र गीत उच्चारण किया, आप दर्शन दे दिए, तो हमें बस यही चाहिए कि आपके शुद्ध भक्तों का हमें संग मिलता रहे, बस, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन बाद में आप देखेंगे कि भगवान प्रचेताओं को भौतिक संपत्ति भी दिए और फिर ये भी वरदान दिए कि बाद में वो तुम मेरे धाम आ जाओ। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे ध्रुव महाराज को भी, वो नहीं चाहते थे लेकिन भगवान ने उनको बोला कि तुम इतने सालों तक राज्य करो, और ध्रुव तारा उनके लिए बनाया। तो भगवान भक्तों को देते हैं भौतिक संपत्ति कई बार, लेकिन भक्त कभी नहीं चाहते। और प्रभुपाद जी ये भी समझाते हैं कि भगवान किन भक्त को देते हैं, जो भक्त बहुत परिपक्व भक्त है, जो भगवान को पता है कि अगर उनके भौतिक संपत्ति मिल भी जाएगा वो मुझे नहीं भूलेंगे। हमारी अवस्था में क्या है, अगर भगवान हमें भौतिक संपत्ति देंगे तो भगवान को ही भूल जाएंगे। मान लीजिए अगर कोई हमें आके 100 करोड़ रुपया देता है आज, तो मैं या हम में से कई लोग हैं सब भक्ति उक्ति भूल के भोग विलास में लग जाएंगे। तो इसलिए भगवान जो नए नए भक्त होते हैं उनको ज़्यादा भौतिक संपत्ति नहीं देते, क्योंकि जानते हैं अगर मैं उनको भौतिक संपत्ति दूंगा तो मुझे भूल जाएंगे। लेकिन प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ऐसे भक्तों को भगवान पूरे संसार का राजा बनाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये कभी मुझे भूलेगा नहीं, इस स्थान में भी मेरी भक्ति करेगा और मेरा प्रचार करेगा। प्रभुपाद जी का आप देखिए, प्रभुपाद जी पहले भगवान ने सब कुछ छीन लिया, प्रभुपाद जी चाहते थे कि वो बिजनेस करें और पैसा कमा के भक्ति का प्रचार करें, लेकिन भगवान पहले उनसे सब कुछ छीन लिए। प्रभुपाद जी के फैक्ट्री में आग लग गई, उनका चोरी हो गया, सब कुछ छीन ली, लेकिन बाद में जब प्रभुपाद जी प्रचार किए फिर भगवान ने सब कुछ दिया प्रभुपाद जी को। इतने सारे केंद्र बन गए, इतने सारे मंदिर बने, इतने सारे भक्त आए, और फिर प्रभुपाद जी ने सारे संपत्ति को भगवान की सेवा में लगाया। तो ये यही इससे सीखने को मिलता है कि जो भक्त होते हैं शुद्ध भक्त, वो कभी कोई भौतिक इच्छा उनके मन में नहीं रहता, केवल भक्तों का संग मांगते हैं, इतना तक कि उनको मोक्ष की भी इच्छा नहीं रहती। ये आखिरी पॉइंट, इस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। कई बार हम सोचते हैं नए नए जब भक्ति में आते हैं कि अरे ये तो संसार बहुत दुख भरा स्थान है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस समय छुटकारा पाना है, भगवान के धाम जाना है, अच्छी बात है शुरुआत में, लेकिन जब भक्ति में आगे आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे मोक्ष की भी इच्छा मन में निकाल देना चाहिए। ठीक है, भगवान के ऊपर है, अगर भगवान हमें अपना धाम लेना चाहें तो ठीक बात है, अगर नहीं लेना चाहे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये प्रार्थना होनी चाहिए कि हमें आप अपना भक्तों का संग दीजिए। तीसरे स्कंद में कपिल देव देवहूति माता को यही शिक्षा दे रहे हैं। तीसरे स्कंद में भी बहुत सुंदर ये प्रसंग आता है, तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय में, जहां पे कपिल देव शिक्षा दे रहे हैं भक्ति के बारे में। तो आपको पता है भक्ति भी गुणों के द्वारा प्रभावित होती है कई बार, क्योंकि हम लोग तो इसलिए कई भक्त जो तमोगुण में रहते हैं उनकी भक्ति तमोगुण में ही भक्ति रहती है, वो भक्ति तो करते हैं लेकिन वो भक्ति के साथ साथ उनके मन में क्रोध ईर्ष्या की भावना रहती है, दूसरों का बुरा चाहते हैं, तो ये हो गई तमोगुण वाली भक्ति। और रजोगुण में ही भक्ति क्या हो गई कि भक्त चाहता है कि मुझे बहुत ऐश्वर्य मिले, सुख संपत्ति मिले, तो वो शुद्ध भक्ति नहीं रहा, रजोगुणमयी भक्ति हो गई। और सतोगुण वाली भक्ति क्या है कि भक्त चाहता है कि मैं भगवान के धाम वापस आऊं, तो ये भी शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति का क्या लक्षण है? शुद्ध भक्ति का लक्षण है मद गुण श्रुति मात्रेण मई सर्व गुहाशे मनोर्गति रविछिन्न यथा गंगाम्भसोम बुधौ लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य युदारितम अहेतुकीया व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। कपिल देव कह रहे हैं कि निर्गुण भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति क्या है। शुद्ध भक्ति का ये लक्षण है कि जैसे भी वो भक्त मेरी कथा मत गुण श्रुति मात्रे न, जब मेरे गुण मेरी लीला का श्रवण करता है तो श्रवण करने मात्र से क्या होता है, वो तुरंत ही आकर्षित हो जाता है मेरे प्रति और सुनना चाहता है मेरे गुणों को। जिस प्रकार गंगा जी हिमालय से समुद्र की तरफ बहती है तेजी के साथ, कोई रोक नहीं सकता, अहेतु के अप्रतिहता। आप देखिए गंगा जी इतनी दूर से आती है, रास्ते में कितने पर्वत आते हैं, कितनी बाधाएं आती है, लेकिन गंगा जी कभी रुकती है नहीं, वो तेजी से समुद्र की तरफ बहती जाती है। उसी प्रकार बिना कोई रुकावट के जो मेरे शुद्ध भक्त रहते हैं उनका मन मेरे तरफ भागता है, वो मेरी कथा सुनने में उनका मन भागता है, मेरे बारे में सुनने के लिए, मेरे बारे में गाने के लिए। यह है शुद्ध भक्ति का लक्षण। फिर आगे कहते हैं सालोक्य साष्टि सामिप्य सारूप्य एकत्वम अपि उता दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। कि जो शुद्ध भक्त रहते हैं वो इतने महान होते हैं कि इनको चार तरह की मुक्ति भी नहीं चाहिए। सालोक्य साष्टि सामिप्य सारूप्य और एकत्व, पांच तरह की मुक्ति है, ये कुछ भी नहीं चाहिए मेरे भक्तों को। एकत्व में भगवान में लीन होना, ये तो खैर भक्त कभी चाहते ही नहीं है, लेकिन जो बाकी चार मुक्ति हैं जैसे भगवान के धाम जाना, उनका स्वरूप प्राप्त करना, चतुर्भुज रूप प्राप्त करना, उनके समान ऐश्वर्य प्राप्त करना, ये सब मुक्ति भी भक्त नहीं चाहता। अगर भगवान उनको अपने धाम ले जाते हैं तो ठीक है, लेकिन भक्त अपने आप कभी नहीं बोलता कि प्रभु मुझे अपने धाम लीजिए, नहीं। भक्त की केवल ये प्रार्थना है मैं आपकी भक्ति करता रहूं, आपका भक्त का संग मुझे मिलता रहे। तो ये है शुद्ध भक्त का लक्षण। और पूरे भागवतम में बार बार हम यही चीज देख रहे हैं, ध्रुव महाराज की प्रार्थना में, प्रहलाद महाराज की प्रार्थना में, आज प्रचेताओं की प्रार्थना में। तो शुद्ध श्रीमद् भागवतम इसलिए कहा गया अमल पुराण क्योंकि इसमें शुद्ध भक्ति का वर्णन है। हमें यही प्रेरणा मिलती है श्रीमद् भागवतम से कि कैसे हम भौतिक कामनाओं से मुक्त होकर शुद्ध भक्ति में लगे, क्योंकि आप जानते हैं भक्ति भी सकाम भक्ति भी होती है, तो हमें सकाम भक्त नहीं बनना। ऐसे यही डिफरेंस है, यही अंतर है हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, इस्कॉन में, बाकी जगह। कई बार अन्य जगह भी लोग भागवत कथा सुनते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन उनके मन में भौतिक इच्छाएं रहती हैं कि मैं भागवत कथा आयोजन करूंगा या सुनूंगा या कुछ धाम में आऊंगा तो मेरे परिवार के कष्ट खत्म हो जाएंगे, मुझे धन की प्राप्ति होगी। अच्छी बात है, लेकिन ये सकाम भक्ति है, शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति यानी बिना कोई भौतिक इच्छा के। फिर से हम यही श्लोक दोबारा सबको ध्यान से ये श्लोक बोलिए, महाप्रभु ने इतना सुंदर हमें सिखाया है शुद्ध भक्ति का क्या अर्थ है। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुके त्वयि। तो ये हमें हर समय प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु मुझे और कोई भौतिक इच्छा, मुझे कोई धन संपत्ति जन ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए, जो कि किसके द्वारा प्राप्त होती है, भक्तों के संघ के द्वारा। इसलिए बस हमें यही प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान हमें आप भक्तों का संग दीजिए। और जब हम भक्तों का संग मिलता है तो हमें कैसे लाभ उठाना चाहिए, भक्तों के संग में आके नाम कीर्तन करें, भागवत कथा श्रवण करें, नहीं तो वैसे भक्तों का संग का कोई मतलब नहीं है। अगर हम भक्तों के संग में आके प्रजल्प कर रहे हैं तो भक्तों का संग नहीं है। वास्तव भगवत का भक्तों का संग यही है कि हम सब मिलके हर समय भगवान की सेवा करें, उनका नाम कीर्तन करें, भगवान का कथा सुनें। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है? गुड़ा कृष्ण कृष्ण प्रभु जी बहुत शुद्ध भक्त है। प्रभु जी केनिया जाके प्रचार करते हैं, इतना नाम जप कर रहे हैं, तो ऐसे भक्तों का संघ हमें प्राप्त करना चाहिए। हरे कृष्ण।